వసుదేవసుతం దేవం కంస చాడు ప్రమర్దనం సుతం దేవం కంస చాడు ప్రమర్దనం దేవతి పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు
తుయ్ బోల్
కృష్ణం వందే జగద్గురు అజో పిసన్ నవ్యాత్మ భూతానామే సరోపిసన్ అజో పిసన్ ప్రకృతి స్వామభీష్టాయ సంభవాంగాత్మమజయా
ప్రకృతి స్వామభీష్టాయ
సంభవాంగాత్మమజయా ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత
యదాయ
ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం ధర్మస్య సదాత్మానం సృజామ్యహం హరి ప్రాణాయ సాధునా వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే జన్మ కర్మ చ మే దివ్య మేవం యో వేతి తత్వత జన్మ కర్మ చ మే దివ్య మేవం యో వేతి తత్వత చక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నతి మామేతి సోర్జున వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రిత బహవో జ్ఞాన తపసా పూతమద్ భావ మాగత వసుదేవసుతం దేవం కంస చాణురమర్దనం దేవకి పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు దేవకి పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు
శ్రీరాంధేయం సదా పరిభవగ్నమభీష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివవిరించినుతం శరణ్యం భిత్యార్థ ஸ்தோத்தியஹம் பிரணதபால பவாப்திபோதம் வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். ஜிஸ்கே ஹசி மஜாக் கரணே கி ஆதத் ஹோ உஸ்கா சுதார் நஹீ ஹோ சக்தா. ஹசி மஜாக் கரணே கா சமய மில் கயா, கால் கே சிகஞ்சே மே ஜக்டே ஹுவே ஹை ஔர் ஹசி மஜாக் சூஸ்தி ஹை. யஹாம் மஜாக் கரணே கே லியே ஹசி கரணே கே லியே சமய கஹாம் ஹை? சாவதான் ரஹனா சாஹியே. தூசரா நிகம்மாபன் பஹுத் கராப் ஹை. ஏக் ஆத்மி நிகம்மா ஹோதா ஹை தோ வஹ தூசரே கோ பீ நிகம்மா பனா தேதா ஹை. தீசரி ஷௌகினி ஹை, சௌகினி தோ பஹுத் ஹி கராப் ஹை. அப்னே கோ அச்சா பதானே கா, அச்சா பஹன் கர் அச்சா பதானே கா, சுந்தர் பதானே கா ஜோ பாவ் ஹை, யே பஹுத் பதன் கர்னே வாலா ஹை. மேனே ஜோ யே தீன் பாத் பதாயி ஹை, ஹசி மஜாக் நிகம்மாபன் ஔர் ஷௌகினி, யே தீனோ மஹா பிரமாத் ஹை. तीनों ही दोष परमात्मा की प्राप्ति में महान हानिकारक है. इनको प्लेग की बीमारी की तरह समझना चाहिए, दूसरों पर बहुत जल्दी असर डालती है. आलसी आदमी का कहीं भी गुजारा ही नहीं है, न व्यापार में न भगवान के यहां. आप अपने पास में लिख लो कि जयदयाल ये जोर से कहता है. देखो सेठ जी ने अपना नाम लेके कहा, आप अपने यहां लिख लो कि जयदयाल ये जोर से कहता है कि आलसी का भगवान भी साथी नहीं है, पापी का भगवान साथी नहीं है. कितनी भी अच्छी से अच्छी संस्था हो, परोपकार की संस्था हो, लेकिन आलसी को तो वो भी नहीं रख सकती. किसी ने प्रश्न कर लिया कि सेठ जी आपने कहा कि आलसी का भगवान भी साथी नहीं है, भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान सर्वशक्तिमान है, वे आलसी से घबराते क्यों हैं? क्या वो आलसी आदमी भगवान का कुछ बिगाड़ कर सकता है? उत्तर, भगवान का बिगाड़ नहीं करता, भगवान उससे नाराज रहते हैं उसके हित के लिए. अपने प्रेस में भी, गीता प्रेस में भी आलसी व्यक्ति को नहीं रखना चाहते हैं, निकाल देते हैं, तो ये उसके हित के लिए निकालते हैं. दूसरे दिन आकर यदि वो कह दे कि मैं अब आलस नहीं करूंगा तो हमारे रखने में कहां आपत्ति है? आलसी आदमी की न धार्मिक उन्नति होती, न आर्थिक उन्नति होती. आज संसार में अपनी अवनति हो रही है, उसमें खास कारण आलस्य का है. परिवार में भी जो आलसी आदमी होता है उसकी कोई पूछ नहीं करता. कहीं काम करने से जी चुराने वालों की आपको उन्नति देखने में आई? फिर भी यदि कहीं थोड़ी बहुत उन्नति देखे तो वो आलस के कारण से नहीं है, उसके भाग्य के कारण से कोई हो गई होगी, पिछले जन्म का पुण्य का फल है. इस आलस्य का फल आगे उसको मिलेगा. इसलिए जिस काम को भी करो तत्परता के साथ करो. श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिय है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि तत्पर होकर के परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लगो तो शांति मिलेगी। जितेंद्रिय हो, साधन परायण हो, श्रद्धावान हो, ऐसे मनुष्य को ज्ञान होता है। इसलिए बिना किसी विलंब के तत्काल इधर लगना चाहिए। कैसा श्रद्धावान हो कि तत्पर होना चाहिए। तत्पर इसलिए बताए कि मालूम हो जाए कैसी श्रद्धा है, नहीं तो लोग धोखा दे देंगे। तत्परता होगी तो संयम भी हो जाएगा। कोई कहते मेरा मन वश में नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उसने संयम करने का प्रयास ही नहीं किया है। प्रेम में वियोग से जी घबराने लगता है, ये प्रेम है। किसी महात्मा की आज्ञा की अवहेलना हो जाए और जी घबराने लगता है, ये श्रद्धा है। भगवान में श्रद्धा और प्रेम दोनों में से एक भी हो जाए तो कल्याण होने वाला है। अच्छे पुरुष हो उनमें श्रद्धा होना अच्छा है। श्रद्धा के बाद प्रेम होता है, प्रेम के बाद श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा की ताकत है कि वो प्रेम को खींच लेती है, और प्रेम बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। जिसके बिल्कुल ही भजन नहीं होता है, उसकी अपेक्षा आठ पैर में एक बार भी जो भगवान को याद कर लेता है वो श्रेष्ठ है। परंतु जो सब समय में निरंतर भजन करता है उससे तो कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जिसे भजन करना नहीं पड़ता, बल्कि जिससे जो होता है वो भजन ही होता है, वो प्राणों से बढ़कर भगवान के लिए प्यारा है। क्योंकि वो भी तो प्राणों से बढ़कर भजन करता है। प्राण एक तरफ, भजन एक तरफ। प्राण जाकर भी भजन कायम रह जाए, ये अच्छी चीज है, असली चीज है। प्राण भले ही चले जाए, भगवान विदा नहीं होने चाहिए। जैसे किसी को पानी में डुबा दिया जाए, पानी से निकलने के लिए कैसे छटपटाता है, ऐसी भगवान के भजन छूटने पर छटपटाहट होनी चाहिए। छटपटाहट से बहुत काम बन जाता है। जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई वे बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं। संसार का बड़ा हित होता है। भगवान से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान से तो एक ही इच्छा करो, ये भगवान कल्याण करो, तो कल्याण करते हैं। परंतु भक्त होता है वो यही कहता है कि भगवान सबका कल्याण करो, और ऊंचा भक्त होता है वो अपने को बचाकर सबका कल्याण करता है, कल्याण की बात कहता है। इसलिए भगवान को भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। भक्त और भगवान में एक दृष्टि से भक्त बड़ा है, क्योंकि भगवान तो कानून में बंधे रहते हैं, भक्त कानून में नहीं बनता। भगवान का एक भक्त था, खेती का काम करता था, कोई भी आफत पड़ जाए तो भगवान को पुकारता नहीं था, लेकिन भगवान को याद रखता था। उसने कभी नहीं कहा कि महाराज मेरे आफत आ गई, इसको दूर करो, कभी नहीं कहा। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं भगवान को याद करता हूं मेरे आफत क्यों आ गई, ऐसा भी नहीं सोचा। सदैव भगवान को याद रखता था। एक बार नारद जी आ गए, भक्त ने उनकी बड़ी आव भगत की। भक्त से नारद जी ने पूछा कि भजन ध्यान करते हो कि नहीं, कि केवल खेती का ही काम करते रहोगे। कुछ भगवान को याद किया करो, खेती में तुम्हारे बैल भी चलते हैं, तुम भी चलते हो, बैल के समान तुम हो गए। तो उसने आंखों में पानी लेते हुए कहा, महाराज कभी कभी उनकी मर्जी आ जाती है तो कभी कभी भगवान याद आ जाते हैं। जिस समय नींद लेने लगता हूं उस समय भगवान को याद थोड़ा कर लेता हूं, और जब जागता हूं और बिस्तर नहीं छोड़ता हूं उससे पहले पहले मैं भगवान को याद करता हूं। और तो कुछ होता नहीं है। नारद जी ने दो चार बातें सुनाई, वो नारद जी चले गए। नारद जी ने भगवान से जाकर पूछा, महाराज आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है इस समय संसार में? तो भगवान ने कहा कि भाई तुम जिसके खेत में गए थे और जो तुमसे मिला था वो भगत सबसे ऊंचा है। नारद जी ने कहा, महाराज उससे मैंने बात की है, वो तो कहता है कि मैं सोता हूं तो भगवान को कभी कभी याद कर लेता हूं, जागता हूं तो भगवान को याद कर लेता हूं, फिर मैं तो भगवान को याद नहीं करता। और वो भी कहते हैं कि उनकी मर्जी होती है तब याद करता हूं। उसको आपने सबसे श्रेष्ठ भक्त कैसे माना? नारद जी ने सोचा, इधर भगवान कह रहे हैं तो भाई श्रेष्ठ भगत होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान की बात तो झूठी नहीं होती। तो नारद जी असमंजस में पड़ गए, कभी उस भक्त को याद करते हैं कभी भगवान को देखते हैं, यूं 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 करने लगे। भगवान ने पूछा, नारद जी क्या मेरी बात तुम्हारे कम जची क्या? सीधे साधे नारद जी ने कह दिया कि युक्ति से तो कम जच रही है महाराज। भगवान ने उसी समय लीला की, भगवान कराने लगे के भाई नारद जी क्या बताऊं, मैं तुमको इस समय बहुत बड़ी बात तो समझाता लेकिन मेरे बहुत बड़ा घाव हो गया है, और वैद्य लोग आए उनको मैंने दिखाया है तो वैद्य ने कहा है कि कोई आदमी प्रसन्नता से अपने खून की पट्टी लेकर के मेरे यहां बांध दे तब तो ये आपका घाव ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो तुम मेरे किसी भक्त का खून ले आओ। नारद जी एक गिलास ले गए, भगवान के जो मुख्य मुख्य भक्त थे, निरंतर भजन करते थे, उनके पास जाकर नारद जी ने गिलास रख दी और उनसे कहा कि देखो आपका खून इस गिलास में चाहिए, क्योंकि भगवान के यहां बहुत बड़ा घाव हो गया, और बैद्य जी ने कहा है कि खून की पट्टी करनी पड़ेगी, तो आप लोग खून दीजिए। भक्त ने कहा, कई भक्तों ने कहा, क्या बात करते हो नारद जी, भगवान का कोई शरीर हमारे जैसा होता है? भगवान का शरीर दिव्य और चिन्मय होता है, उनके न फोड़ा होता न फुंसी होती न बुखार होता न वो जीते न मरते। भगवान का कोई जन्म थोड़ी होता है, भगवान का कोई मरना थोड़ी होता है, सब लीला है लीला। नारद जी हमको मत बहकाओ, भगवान का दिव्याति दिव्य श्री विग्रह उसमें कोई फोड़ा फुंसी नहीं होता, चले जाओ यहां से। नारद जी बिचारे मुंह लटकाए रवाना हो गए, कई जगह गए, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने कह दिया नारद जी तुम्हारा कोई छल कपट है, तुम भगवान के बहाने से आए हो, तुम किसी और के लिए ले जा रहे हो। नारद जी ने कहा मेरी बात मानो, मैं भगवान के लिए ले जा रहा हूं, भगवान के लिए तो खून की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे सब जगह घूमते घूमते उस खेती वाले खेती करने वाले के आप वहां आ गए। उस खेती करने वाले किसान से कहा अरे भाई क्या हुआ महाराज, ये गिलास इसमें खून चाहिए, भगवान के घाव हो गया और उस खून में पट्टी डुबो डुबो करके वैद्य उसका इलाज करेंगे। अच्छा आपको भेजा कि हाँ लो चाहे जितना खून ले लो, सबसे ज्यादा खून यहाँ ये गोडे से लेकर के कटी तक यहाँ होता है सबसे ज्यादा खून, यहाँ नसें भी कुछ ऐसी होती है भगवान ने एक्स्ट्रा दी है, ये गोडे से लेकर के और यहाँ कमर तक के जो भाग है इस भाग को उसने काट दिया, खून निकलने लगा तो गिलास भर दिया। नारद जी देखते रह गए, उसने कहा और लाओ गिलास और भर दूं। नारद जी ने कहा नहीं इतना ही कहा तक, अच्छा ठीक है। गिलास भरा हुआ ले गए नारद जी, भगवान ने पूछा अरे ये खून कहां से लाए हो, किसने दिया। नारद जी ने कहा महाराज आपके भगत सब दिखावटी है नकली है, कोई तो कहता है भगवान दिव्य है चिन्मय है लीला करते हैं खून की जरूरत ही नहीं है, भगवान परीक्षा लेते हैं, कोई कहता है कि नारद जी तुम खुद ही गड़बड़ करते हो, काहे न जाने किसके लिए ले जाते हो। कोरा जवाब दे दिया और वो जो खेती करने वाला था ना जिसकी बात अपन पहले कर रहे थे उसने अपने शरीर में से खून दे दिया और ये और कहा कि और जाओ और ले जाओ। भगवान ने कहा अब तुम ही निर्णय करो कि मेरा सबसे बढ़कर कौन भक्त है, तुम्हारे क्या जचा। नारद जी छल छल आ गए। नारद जी ने कहा सबसे बड़ा भक्त वो किसान है। भगवान ने कहा इतना भागते क्यों फिरे, तुम भी तो भक्ति थे तुम ही काट के दे देते। नारद ने कहा महाराज ये तो मेरे बात उपजी रही। भगवान ने कहा अपने प्राणों से बढ़कर तुम मुझे समझते हो तब तो ये बात तुम्हारे अंदर ही पैदा होनी चाहिए थी कि महाराज ये तो केवल कहने की बात रह गई, असली प्रेम तो मैंने उस भगत का देखा है। तो असली भक्ति होती है उसमें सर्वस्व भगवान के लिए न्योछावर होता है, अपना जीवन अपना समय अपना जो कुछ है सब भगवान के लिए समर्पित होता है। ऐसा असली प्रेम असली श्रद्धा होनी चाहिए। प्रश्न किया कि श्रद्धा करना अपने हाथ की बात नहीं है, हमको बैठा करके आप जप करा लो जप हम कर लेंगे, हमको बैठा कर कोई काम करा लो काम कर लेंगे, पर श्रद्धा कैसे करें, श्रद्धा में तो मन को बदलना पड़ता है, तो ये कैसे बदले इसको। हाँ कुछ अंश में बात ठीक है, ईश्वर में श्रद्धा प्रेम कैसे हो ये प्रश्न आपके अंदर हरदम जागते रहना चाहिए। इस प्रश्न का जब तक समाधान न हो तब तक ये प्रश्न अंदर ही अंदर होते ही रहना चाहिए, कैसे भगवान में श्रद्धा हो, कैसे श्रद्धा हो, तब बात बनेगी। असली बात यह है, चाहे सुनो चाहे मत सुनो, अपने लोगों की जो स्थिति चल रही है बड़ी कमजोर है। इस चाल से कल्याण होना कठिन है। जैसा अभी आप लोग चलते हो, अंत समय में भगवान की याद आ जाए ऐसा ढंग लगता नहीं है। अंत समय में कैसी परिस्थिति होगी पता नहीं है, क्या भाव होगा पता नहीं है। आपको डर क्यों नहीं लगता है, निश्चिंत क्यों बैठे हो? अरे मरने के बाद 84 का फेर बहुत लंबा है। यहां के दुखों को देखकर आप लोग दुखी होते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे जो दुखों का प्रवाह चलेगा उसका कोई अंत नहीं है। हर जन्म में दुख है, हर जन्म में दुख है। उन दुखों को याद करके आप अपना उद्धार में लग क्यों नहीं जाते हो, क्यों अलग जन्म का निमंत्रण देते हो? पूरी चेष्टा करनी चाहिए, आपके अंदर आग लगनी चाहिए। आप ये मत समझो कि अंत समय में हम कर लेंगे, धोखा हो जाएगा। आपको तो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अंत समय से पहले ही हो जाए। इस समय जो आपका साधन चल रहा है उसके भरोसे तो परमात्मा की प्राप्ति की आशा ही नहीं है। परमात्मा बदलना चाहे तो एक क्षण में बदल दे, परंतु परमात्मा भी कब चाहेंगे, जब आप कुछ परमात्मा के लिए व्याकुल होंगे तब ना। परमात्मा की प्राप्ति की जो व्याकुलता होती है ये बातें केवल पुस्तकों में पढ़ने की रह गई है, कहने सुनने की रह गई है, बाहर प्रत्यक्ष में ऐसे दिखते ही नहीं है। प्रेमी भक्त के जो लक्षण है वो देखने में नहीं आते, न प्रेमी भक्त का दर्शन होता है न व्याकुल होने का रहता है। जिधर देखो उधर डूबने ही डूबने का साध है, तैरने का साधन है ही नहीं। भगवान का नाम तैरने के लिए कितना बड़ा जहाज है, पर नाम में भी श्रद्धा नहीं है। प्रश्न, नाम की शक्ति से श्रद्धा हो सकती है क्या? कि बिल्कुल हो सकती है। ये बात युक्ति से समझ में नहीं आती है, नाम में लगोगे तो समझ में आएगी। आप लोग जितना भगवान के विषय में सोच सोच करके कदम रखते हो, उससे आधा भी यदि संसार की तरफ सोच सोच करके कदम रखते तो न जाने अब तक आप कहां के कहां पहुंच जाते हैं। कितना सोचते हो नाम से हो जाएगा क्या, रूप से हो जाएगा क्या, उससे हो जाएगा क्या? क्या आपने सोचा कि धन कमाने से कल्याण हो जाएगा क्या? सोचा स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति से कल्याण हो जाएगा क्या? सोचा? इधर इधर सोचते हो। शास्त्र कहता है उसके अनुसार यदि आप चलो हम चले तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। भगवान की आज्ञा का पालन करने से एक क्षण में असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक बन सकता है। भगवान की आज्ञा का पालन करना सुगम है, पर थोड़ी ढोना पड़ता है, पंचांगनी थोड़ी तपनी पड़ती है। अरे आनंद में डूबे हुए रहकर भगवान मिल जाते हैं, परिश्रम का काम नहीं। इससे ज्यादा सस्ता क्या सौदा होगा। ऋषि मुनियों ने जिस तपस्या में सैकड़ों वर्ष लगाए वो काम मिनटों में हो सकता है। बालक हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो कैसे हो सकता है? मैंने जैसा अभी आपको बताया, ऐसे परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाओ, ऐसे व्याकुल हो जाओ कि परमात्मा के बिना रह नहीं सको। मन मना भाव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ऐसे अनन्य भाव से आप भगवान को याद करो। जाति से कोई नीचा है, कोई आश्रम से नीचा है, भले ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाव के अंदर कोई जाति थोड़ा ही होती है। भाव बदलना हो उसमें जाति आश्रम क्या करेंगे, ये तो बाहर का व्यवहार है। भाव बदलो, काम हो गया। भाव बदलने के लिए तो शास्त्र ने आज्ञा दी है। गीता जी ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण भाव बदल सकता है, शूद्र नहीं बदल सकता। एक ही मनुष्य का कहावा, एक ही शब्द लाभ में तारतम्यता है। गुरु एक शब्द बोलता है पर सब शिष्यों को एक जैसा लाभ नहीं होता है। श्रद्धा ज्यादा है तो ज्यादा लाभ होगा, थोड़ी श्रद्धा थोड़ा काम, थोड़ा लाभ होगा। जैसे एक समय में बरसात होती है और एक ही खेत में खूब जल बरस गया तो वहां जितने पौधे हैं सब हरे भरे हो गए। उसमें कई जहर के पौधे भी तैयार हो गए, कई अन्न के पौधे भी तैयार हो गए, कोई आम के पौधे भी तैयार हो गए। जल एक है, जमीन एक है, पर पौधे अलग अलग हैं। ऐसे ही शास्त्रों का वचन एक है, महात्माओं की वाणी एक है, हृदय के भाव अनेक हैं। अपने आप का अध्ययन करो, अपने अंदर जो दोष है उनको चुन चुन करके निकालो और उनके वो निकाल निकाल करके भगवान के भाव अंदर भरते जाओ। नारायण नारायण नारायण।